میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، صلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک بار ڈاکوؤں کی ایک جماعت یہ لوٹ مار کے لیے نکلی، اسی دوران رات انہوں نے ایک مسافر خانے میں قیام کیا، یعنی وہاں ٹھہرے جا کر، اور وہاں یہ ظاہر کیا کہ ہم لوگ راہ خدا کے مسافر ہیں۔ مسافر خانے کا جو مالک تھا وہ بڑا نیک تھا، اس نے اللہ کی رضا پانے کے لیے ان کی بڑی خدمت کی، راہ خدا کے مسافر ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، اس نے ان کی بڑی خدمت کی۔ صبح وہ ڈاکو روانہ ہو گئے، لوٹ مار کر کے شام وہیں سے گزرے، تو سردار کہنے لگا کہ آؤ دوبارہ اس کی دعوت اڑاتے۔ بولا بالا انسان تھا، چنانچہ جب وہ مسافر خانے میں داخل ہوئے تو بڑی آؤ بھگت کی، کھانا وغیرہ پیش کیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ گزشتہ شب مسافر خانے والے کے جس لڑکے کو انہوں نے معذور دیکھا تھا، زمین پہ پڑا ہوا تھا، وہ آج بلا تکلف چل پھر رہا تھا۔ انہوں نے تعجب کے ساتھ اس مسافر خانے والے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی کل والا معذور بچہ ہے؟ اس نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ جی ہاں یہ وہی ہے۔ حیران ہو گئے کہ یہ صحت یاب کیسے ہو گیا؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب آپ جیسے راہ خدا کے مسافروں کی برکت سے۔ وہ بڑے حیران کہ ہم تو ڈاکو تھے، جھوٹ موٹ اس کو کہا تھا بھائی ہم تو راہ خدا کے مسافر ہیں۔ کہا کہ مطلب کیا؟ تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ کل آپ تو چلے گئے کھانا وغیرہ کھا کر، آپ نے جو کھایا تھا اس میں سے کچھ بچا تھا، تو ہم نے آپ حضرات کا جھوٹا کھانا بنیت شفا اس بچے کو کھلایا، اور جو پانی آپ نے پی کر چھوڑا تھا تو وہ جھوٹا پانی اس سے اس کی بدن پر مالش کی، اللہ تعالی نے آپ جیسے نیک بندوں کے جھوٹے کھانے اور پانی کی برکت سے ہمارے بچے کو شفا عطا فرما دیا۔ ڈاکو نے جب سنا تو ان کے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سب تو آپ کے حسن زن کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم تو سخت گناہگار لوگ ہیں۔ سنو، ہم رائے خدا عز و جل کے مسافر نہیں، ڈاکو ہیں، اور اللہ عز و جل کی اس کرم نوازی نے ہمارے دل کی دنیا زیر و زبر کر دی، ہم آپ کو گواہ کر کے توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ تائب ہو کر ان لوگوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, देखा आपने कि फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल से बयान की गई इस हिकायत से जो मालूम हुआ हमें वो ये कि मुसलमान पर हुस्न जन की बहुत बरकतें हैं। हुस्न जन का मतलब क्या है? हुस्न जन का मतलब है अच्छा गुमान रखना, अच्छा ख्याल जमाना, अच्छा सोचना। मसलन फुला शख्स बहुत नेक है, अच्छा सोचते हैं ना, अच्छा ख्याल करते, अच्छी तवज्जो जाती है हमारी, तो ये फुला शख्स बहुत नेक है, मेरे मुर्शिद अल्लाह के वली हैं। ये उसने जन हुआ ना, मेरे मुर्शिद अल्लाह के वली हैं, मेरा निगरान ये बहुत नेकियां करने वाला है। इस तरह से आप किसी के मुतालिक सोचें, अच्छा सोचेंगे, ये अच्छा सोचना, अच्छा ख्याल करना, ये हुस्ने जन कहलाता है। तो मुसाफिर खाने के मालिक ने डाकुओं की जमात से हुस्ने जन रखा, अच्छा ख्याल किया, उनकी खूब खिदमत की, उनका झूठा खाना बतौरे तबरुक अपने माजूर बच्चे को खिलाया, उनका झूठा पानी अपने माजूर बच्चे के बदन पर मला, अल्लाह ताला ने हुस्ने जन की बरकत से उस माजूर बच्चे को शिफा अता फरमा दी। अब हम सोचे कि हम अच्छा सोचते कि नहीं, हमारा सोचने का अंदाज क्या है? तो हुस्ने जन ही की बरकत थी कि हुस्ने जन किया था ना। क्या इसकी बरकत मिली? कि डाकुओं का गिरोह भी तौबा करके नेकी के रास्ते पर चल पड़ा और उस पर साबित कदम रहा। तो काश हमें भी हर नेक मुसलमान से हुस्ने जन रखना नसीब हो जाए। काश हमें भी अपने दीनी उस्ताद से, अपने इमाम साहब से, अपने निगरान से हुस्ने जन रखना नसीब हो जाए। आए ना मुझे वसवसे और गंदे ख्यालात, आए ना मुझे वसवसे और गंदे ख्यालात, दे ज़हन का और दिल का खुदा कुफले मदीना, अल्लाह मुझे कर दे अता कुफले मदीना। एकाश सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस वाक्य से मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, पता चला कि जब एक आम से मुसलमान के झूठे में भी शिफा है तो एक नेक मुत्तकी परहेजगार और अल्लाह के वली के झूठों में बरकतों का कैसा समुंदर ठाटे मारता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रमजान मुबारक में एतिकाफ की बहारें होती हैं, एक एक माह के एतिकाफ की बहारें होती हैं और आखिरी अशरे में तो कसीर इस्लामी भाई आते हैं। बाज औकात तो ऐसा भी हुआ 2 साल पहले कि आखिरी अशरे में लिया ही नहीं गया किसी को, क्योंकि तादाद ही पूरी हो चुकी थी। तो आखिरी अशरे में 1425 सीने हिजरी का वाकया है, कमोबेश 2000 मोतकिफीन थे यहां पर, उनमें जिला चकवाल पंजाब पाकिस्तान के 77 साल मुअम्मर बुजुर्ग हाफिज मोहम्मद अशरफ साहिब ये भी मोतकिफ हो गए। किबला हाफिज साहब का हाथ और जबान ये मफलूश थे, कुव्वत समाज भी जवाब दे चुकी थी, लेकिन थे बड़े खुश अकीदा, बहुत खुश अकीदा थे। उन्होंने एक बार इफ्तार के खाने में बस सदे हुस्ने जन, अच्छा ख्याल करके शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी जियाई दामत बरकातुम आलिया से झूठा खाना लेकर खाया, उन्हीं से दम्बी करवाया, बस उनके हुस्ने जन ने काम कर दिखाया, रहमत इलाही अज़्ज़ा वजल को जोश आया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें शिफायाब फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उनका फालिज का मरज जाता रहा। उन्होंने हजारों इस्लामी भाइयों की मौजूदगी में फैजान मदीना के मंच पर चढ़कर बसद अकीदत अपने रूबे सेहत होने की बिशारत सुनाई। ये नवीद जाफिजा सुनकर इस आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना की जो दरो दीवार है वो अल्लाह 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 की सदाओं से गूंज उठी। दावत इस्लामी की कयूम, दोनों जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा शख्स ये अल्लाह अज़्ज़वजल का वली है और इसका मुकर्रब बंदा है, इसलिए अब करना क्या है? इसलिए हमें हर एक मुसलमान भाई के झूठे की कदर करनी चाहिए। मगर अफसोस कि हमारे माशरे में ये बड़ा अजीबोगरीब रस्म और रवाज है और बचे हुए खाने और मशरूबात को जाया करने का रुझान ये बहुत बढ़ चुका है। तो हर तरफ खाने की बेहुरमती के दिलसोज नजारे, घरेलू फंक्शंस हों, तकरीबात हों या बुजुर्गान दीन की नियाज, इनके भी तबरुकात हों, समाजी महफिलों या शादी की तकरीबात, हर तरफ खाने को जाया करने के अफसोसनाक मनाजिर हैं। थालों में बचा हुआ थोड़ा सा खाना, प्यालों और पतीलियों देगों में बचा हुआ शोरबा, प्लेट में बच जाने वाला सालन, रोटी के बच जाने वाले काबिले इस्तेमाल किनारे, टुकड़े दोबारा इस्तेमाल करने का जहन ही नहीं है लोगों का। इस तरह बहुत सा बचा हुआ खाना ये उमूमन कचरा कुंडी की नजर कर दिया जाता है, यानी डस्टबिन में डाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। हालांकि ये इसराफ यानी चीज का जाया करना है। लिहाजा अब तक जितना भी इसराफ किया, पानी पीते तो बाजू का तो कोई फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ये लगता है कि यार पूरी पियेंगे तो लोग क्या कहेंगे, किसी के मेहमान जाते हैं तो ये होता है कि यार कोल्ड ड्रिंक पूरी पियेंगे तो देखो पूरी बोतल पी गया। तो बोतल वगैरह ये तो ऐसी चीजें कि जिनको पी लेना चाहिए, उमन ये पीता नहीं है, वो फेंक देते इसको, या कोल्ड ड्रिंक वाले को वापस कर देते, वो भी जाया कर देते। तो याद रखिए कि खाने का एक दाना, शोरबे का एक कतरा, ये भी जाया ना हो। और अहद कर लीजिए कि ऐसा इसराफ जिसमें माल जाया होना पाया जाए, ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो नियत कर लीजिए, आहद कर लीजिए कि आइंदा इसराफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह गिलास में बचे हुए मुसलमान के साफ सुथरे झूठे पानी या मशरूब को काबिले इस्तेमाल होने के बावजूद फेंका ना जाए। मनकूल है कि मुसलमान के झूठे में शिफा है। अपने मुसलमान भाई का झूठा इस्तेमाल करने में जहां शिफा मिलने की उम्मीद है, वहीं आपस में उख़ुवत व भाईचारा, बाहमी मोहब्बत के बढ़ने, तकब्बुर जैसी बीमारी से बचने, आजिजी और इनकिसारी पैदा होने के साथ साथ गुनाहों से मुआफी मिलने की भी खुशखबरी है। चुनाचे हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बाकरीना है कि आजिजी की एक अलामत ये भी है कि आदमी अपने मुसलमान भाई का झूठा यानी बचा हुआ पानी पी ले, और जो अपने भाई का झूठा पीता है उसके 70 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, 70 गुना मिटा दिए जाते हैं और उसके लिए 70 नेकियां लिखी जाती हैं। मरहबा मरहबा। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबुआ किताब है उयूनुल हिकायात, इसके हिस्सा अव्वल के सफहा 166 पर 74 नंबर हिकायत ये है कि हजरत सैयदना खल्द बिन अय्यूब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि बनी इसराइल के एक आबिद ने पहाड़ की चोटी पर 60 साल तक 60 ईयर्स अल्लाह की इबादत की। एक रात उसने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, फुला मोची तुझसे ज्यादा इबादत गुजार है और उसका मर्तबा तुझसे ज्यादा है। जब वो आबिद नींद से बेदार हुआ तो ख्वाब के बारे में सोचा, फिर खुद ही कहने लगा ये तो महज ख्वाब है, इसका क्या एतबार। ज्यादा उसने ख्वाब की तरफ तवज्जो ना दी। कुछ अरसे बाद उसे फिर वही इसी तरह का ख्वाब में कहा गया कि फुला मोची तुझसे अफजल है, मगर अब की बार भी उसने ख्वाब की तरफ तवज्जो ना दी। तीसरी मर्तबा भी उसे ख्वाब में इसी तरह कहा गया। बार बार ख्वाब में जब उसे मोची की फजीलत के बारे में बताया गया, वो पहाड़ से उतरा, मोची के पास पहुंचा। मोची ने जब उसे देखा तो अपना काम छोड़कर ताजीमन खड़ा हो गया, बड़ी अकीदत से उस आबिद की दस्तबोसी करने लगा, हाथ चूमने लगा। अर्ज गुजारा, हुजूर आपको किस चीज ने इबादत खाने से निकलने में मजबूर किया है? वो आबिद कहने लगा, मैं तेरी वजह से आया हूं, मुझे बताया गया कि अल्लाह ताला की बारगाह में तेरा रुतबा मुझसे ज्यादा है, इस वजह से मैं तेरी जियारत करने आया हूं। मुझे बता, वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से तुझे अल्लाह ताला की बारगाह में ये आला मकाम हासिल हुआ। वो मोची खामोश रहा, गोया अपने अमल के बारे में बताने में हिचकिचाहट करने लगा। फिर कहने लगा, मेरा और तो कोई खास अमल नहीं है, हाँ इतना जरूर है कि मैं सारा दिन रिज़्क़े हलाल कमाने में मशगूल रहता हूँ, हराम माल से बचता हूँ, फिर अल्लाह ताला मुझे सारे दिन में जितना रिस्क अता फरमाता है मैं उससे आधा उसकी राह में सदका कर देता हूँ, आधा अपने अहलो इयाल पर खर्च करता हूँ। दूसरा अमल ये है कि मैं कसरत से रोजे रखता हूँ। इसके अलावा कोई और चीज मेरे अंदर ऐसी नहीं जो बाइस फजीलत हो। ये सुनकर आबिद उस नेक मोची से के पास से चला गया, दोबारा इबादत में मशगूल हो गया। कुछ अरसे के बाद उसे ख्वाब में देख कहा गया कि उस मोची से पूछो कि किस चीज के खौफ ने तुम्हारा चेहरा जर्द कर दिया है। चुनाचे वो आबिद दोबारा मोची के पास आया, उससे पूछा तुम्हारा चेहरा जर्द क्यों है, आखिर तुम्हें किस चीज का खौफ दामनगीर है। मोची ने जवाब दिया, जब भी मैं किसी शख्स को देखता हूं मुझे ये गुमान होता है कि यह शख्स मुझसे अच्छा है, है? जब भी किसी को देखता हूं ये गुमान करता हूं, ये ख्याल करता हूं कि ये शख्स मुझसे अच्छा है, ये जन्नती है, मैं जहन्नम के लायक हूं, मैं अपने आप को सबसे हकीर जानता हूं, अपने आप को सबसे ज्यादा गुनाहगार तसव्वुर करता हूं, मुझे हर वक्त जहन्नम का खौफ खाए जा रहा है, बस यही वजह है कि मेरा चेहरा जर्द हो गया है। तो आबिद अपनी इबादत खाने में वापस चला गया। हजरत सैयदना खल्द बिन अय्यूब रहमतुल्लाह ताला ले फरमाते हैं कि उस मोची को उस इबादत गुजार शख्स पर इसीलिए फजीलत दी गई कि वो दूसरों के मुकाबले में अपने आप को हकीर समझता था और अपने अलावा सबको जन्नती समझता था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफरत हो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, पहाड़ की चोटी पर 60 साल 60 इयर्स अल्लाह की इबादत करने वाले आबिद से बढ़कर एक मोची को उससे बढ़कर इबादत गुजार और बड़ा मकाम हासिल हुआ। उस नेक और साले मोची की खसूसियात क्या थी? सारा दिन रिज़्क़े हलाल कमाता, हराम से बचता, आधा माल राय खुदा में सदका कर देता। दूसरा अमल उस नेक और साले मोची का ये था कि कसरत से रोजे रखता, खास तौर पर वो अमल जिसकी बिना पर उस नेक और सालेह मोची को 60 साल तक अल्लाह की इबादत करने वाले आबिद से बढ़कर मकाम हासिल हुआ। वो खास अमल ये था कि वो सबसे हुस्ने जन रखता था, सबको अपने से अच्छा समझता था, अपने अलावा सबको जन्नती समझता और खुद अपनी कैफियत ये कि जहन्नम के खौफ से उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। तेरे खौफ से तेरे डर से हमेशा, तेरे खौफ से तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता, या इलाही थर थर रहूं कांपता, या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। याद रखिए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, जो हुस्ने जन जो है ना, अच्छा ख्याल करने की जो आदत है, ये एक उम्दा इबादत है। सीने में धड़कने वाला दिल भी हमारे नामे आमाल में नेकियों के इजाफे का सबब बनेगा या गुनाहों में तरक्की में बराबर का शरीक होगा। जब मैदान महशर में हाथ पांव आंख कान वगैरह सबसे हिसाब लिया जाएगा तो ये दिल भी उन आजा के साथ शरीक होगा। ये भी पार्ट ऑफ बॉडी है, बजायर इससे कोई काम हम यूं हाथ से जिस तरह लेते हैं, आंख से देखते हैं, जबान से बोलते हैं, दिल से ऐसा कोई काम नहीं होता। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि अगर मुसलमानों से बिला वजह बदगुमानी की तो उस पर भी पकड़ का खौफ है। चुनाचे पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 में इरशाद बारी तआला है ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ترجمہ کنز الایمان، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے، دل کے تیمار ہمارا کرتا، دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے؟ تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ دل جس میں پورے جسم کی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو دل پریشان ہو جاتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا دل خود ہی گناہ کر کر کے بیمار ہو چکا ہے، تو یہ دل کس طرح ہماری تیماری داری اور خیر خواہی کرے گا؟ اللہ ہی جانے ہمارا کیا بنے گا. اور میرے مرشد امیر اہل سنت عاشق اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، قلب دل، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. میرے میٹھے میٹھے صاحب، یہ دل کی کیفیت ہی ہوتی ہے نا، کہ بعض بہت نرم دل والے ہوتے ہیں، کہ اگر مثال کسی کی گاڑی کو گاڑی چلا رہا ہو اور گاڑی چلاتے چلاتے اچانک بے خیالی میں کوئی بلی کا بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جائے، اس کا قصور نہیں تھا، بے خیال میں بچہ خود ہی آ گیا اور کچل گیا، تو ہمارا سارا دن ہمیں کیفیت چینج ہو جاتی ہے، یار یہ بلی کا بچہ مر گیا یار. کبھی بچہ ہمارا کسی پرندے کو کوئی جانور کو تکلیف دے اور مر جائے، اپنی کیفیت تبدیل ہو جاتی. لیکن اس ہماری طرح کا ہی کوئی انسان ہو اور وہ کسی کو قتل کر دے، کسی کو مار ڈالے، کسی پر ظلم و زیادتی کرے، اس کا مطلب اس کے دل میں سختی آ گئی نا، تبھی تو وہ اتنا گناہوں پر دلیر ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، اس فانی دنیا میں اپنی زندگی کے مختصر دن گزارنے کے بعد ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نہ جانے کتنے عرصے تک ہمیں قبر کی وحشت اور تنہائی میں رہنا پڑے گا. پھر جب میدان محشر میں ہم اپنے خالق و مالک عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو ہمیں اپنا ہر ہر عمل اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا دکھائی دے گا. پارہ 30 سورۃ الزلزال آیت نمبر 6, 7, 8 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ترجمہ کنز الایمان، اس دن لوگ اپنے رب عز و جل کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے ہمارے لیے بخشش کا حکم ہوگا یا معاذ اللہ عز و جل جہنم میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائے گا. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. اپنے معاملات پر غور کریں کہ ہم کیا کیا نہیں سوچتے، کیا کیا نہیں بولتے، کیا کیا نہیں دیکھتے، کیا کیا نہیں سنتے، کیا کیا نہیں پکڑتے، کیا کہاں کہاں نہیں جلتے چل کے جاتے. تو اگر اللہ تعالی کی نافرمانی ہوئی اور رب تعالی اس کے سبب ہم سے ناراض ہو گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نعرے جہنم میں جلوں گا یا رب. रिश्तेदार के लिए राजी हो जा, गर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दावत इस्लामी के इशात इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब अल्लाह वालों की बातें जिल्द दो सफ में है। हजरत सैयदना बकर बिन अब्दुल्ला मुजनी रहमतुल्लाही ताला ले जब किसी बूढ़े को देखते, उसने जन की आदत बनानी है ना, बुजुर्गों का अंदाज देखिए क्या है। आप जब किसी बूढ़े को देखते तो फरमाते ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे बेहतर है और मुझसे पहले अल्लाह की इबादत करने का शरफ रखता है। और जब किसी जवान को देखते तो फरमाते ये मुझसे बेहतर है क्योंकि मैं इससे ज्यादा गुनाहों का मुर्तकिब हुआ हूं। नीज ये भी फरमाया करते कि खुद पर ऐसा काम लाजिम कर लो कि अगर इसे बजा लाओ तो अजर सवाब के हकदार ठहरो, और अगर अमल ना कर सको तो गुनाहगार ना ठहरो, और ऐसे कामों से बचो कि अगर बजा लाओ तो अजर ना पाओ और रह जाए तो गुनाहगार हो। पूछा गया वो क्या है, फरमाया लोगों से बदगुमानी रखना, लोगों के मुतालिक बुरा सोचना, क्योंकि अगर तुम्हारा गुमान दुरुस्त साबित हुआ तुम्हें इस पर अजर सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गुमान गलत साबित हुआ तो गुनाहगार ठहरोगे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों की शान पर कुर्बान कि किस तरह अपने अपने आप को मुसलमानों की बदगुमानी से बचाते हैं और हुस्ने जन की तरकीब बनाते हैं। काश काश हमें भी इनके सदके में बदगुमानी से बचकर हर मुसलमान के लिए हुस्ने जन रखना नसीब हो जाए। पारा 26 सूरतुल हुजुरात आयत नंबर 12 में इरशादे रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु जतनिबू कसीरम मिनवन इन बादज़्ज़न इस्मुन। तर्जमाए कंजुल ईमान, ए ईमान वालों बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। रिसायते करीमा में बाज गुमानों को यानी ख्यालात, गुमान करना मतलब ख्याल करना, तो बाज गुमानों को गुनाह करार देने की वजह बयान करते हुए इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ले फरमाते हैं, क्योंकि किसी शख्स का काम बाजों का देखने में तो बुरा लगता है मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता, मुमकिन है कि करने वाला उसे भूल कर रहा हो या देखने वाला खुद ही गलती पर हो। बनी इसराइल का एक शख्स बहुत गुनाहगार था। एक मर्तबा बहुत बड़े आबिद इबादत गुजार के पास से गुजरा, देखा कि उसके सर पर बादल साया फिगन हुआ करते थे। उस गुनाहगार शख्स ने अपने दिल में सोचा कि मैं बनी इसराइल का इंतहाई गुनाहगार बदकार किस्म का शख्स हूं, मैं अगर इसके पास जाकर बैठूं तो हो सकता है उम्मीद है अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए। ये सोचकर वो आबिद के पास बैठ गया। आबिद जो इबादत गुजार था बजायर, उसने दिल में सोचा यार कहा मैं इतना बड़ा इबादत गुजार और कहा ये परले दर्जे का गुनाहगार, ये मेरे पास कैसे बैठ गया, ये कैसे बैठ सकता है। चुनांचे उसने बड़ी हकारत से उस शख्स को मुखातिब किया और कहा यहां से उठ जा। इस पर अल्लाह ताला ने उस जमाने के नबी अली सलाम पर वही भेजी कि इन दोनों से फरमाइए वो अपने अमल नए सिरे से शुरू करें, मैंने इस गुनाहगार को इसके हुस्ने जन के सबब बख्श दिया और इबादत गुजार के अमल को इसके तकब्बुर के बाइस जाया कर दिया। फख्रो गुरूर से तू मुझे बचाना, या रब मुझे बना दे पैकर तू आजजी का। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, देखा आपने और फिर गौर करते जाएं कि अगर आज कुछ अगर हमारी इबादत के कुछ मामलात हो जाएं, नमाजें कुछ पाबंदी से पढ़ने लगे, कुछ सुन्नतों के साचे में भी बाजों का ढल जाएं, या कुछ मतलब जकात और खैर सदका और खैरात करने का कोई रुझान बढ़ जाए, कोई हज एक की जगह दो तीन हो जाए, कुछ उम्रों की तादाद बढ़ जाए, कुछ नेक नामी हो जाए, तो हम अपने आप को क्या समझते हैं, दूसरे हमारे सामने क्या होते हैं, अल्लाह जानता है नीयत किधर की है। तो ये देखा आपने अभी कि इबादत गुजार ने गुनाहगार को कमतर और हकीर जाना, तो इस तकब्बुर की वजह से उसकी इबादत जाया कर दी गई, और फसादी और गुनाहगार शख्स इबादत गुजार को अच्छा जाना और उससे हुस्ने जन रखा, तो उसके हुस्ने जन की बरकत से अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया फरमाते हैं कि हुस्ने जन में कोई नुकसान नहीं है, अच्छा सोचने में कोई नुकसान नहीं और बदगुमानी में कोई फायदा नहीं। गुमान क्या होता है, ये गुमान क्या होता है, बदगुमानी सुन रहे ना, इस तरह हुस्ने जन सुना, अच्छा गुमान करना, गुमान क्या है? तो याद रहे कि हर वो ख्याल जो किसी जाहिरी शय से हासिल होता है गुमान कहलाता है, उसे जन भी कहते हैं। मसलन दूर से कहीं धुआं उठता नजर आए तो हमें गुमान होता है कि वहां आग लगी है, दूर से धुआं देखते हैं तो हमें एहसास होता है, ख्याल आता है, क्या लगता है वहां आग लग गई, तो ये एक गुमान है। उलमा ने गुमान की दो अकसाम बयान फरमाई, यानी गुमान जन इसकी दो किस्में हैं, एक हुस्ने जन और दूसरा सुए जन, जिसको बदगुमानी भी कहा जाता है। हुस्ने जन का मतलब क्या, मुसलमानों के हक में भलाई और खैर का यकीन कर लेना, जैसे ऐन जमात के वक्त किसी को मस्जिद से बाहर निकलता देखें तो गुमान करना कि लगता है यार इसका वुजू बाकी नहीं रहा, इसके कपड़े नापाक हो गए इसलिए ये जा रहा है, हैं? ये तो हम अच्छा सोचेंगे ना, और बदगुमानी करनी हो, यार देखो यार कैसा मौलाना है यार, यहां अंदर जमात हो रही है ये जा रहा है, भाई आप अच्छा सोच लो ना, आपका जाएगा क्या, सवाब मिलेगा। सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी गुमान की अकसाम और उनका हुक्म बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, गुमान की कई किस्में हैं, एक वाजिब है जो अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना, ये वाजिब है, एक मुस्तहब वो मोमिन साले के साथ नेक गुमान रखना, और एक ममनू हराम है वो अल्लाह के साथ बुरा गुमान रखना और मोमिन के साथ बुरा गुमान रखना, एक जायज वो फासिक मौलिन के साथ ऐसा गुमान करना जैसे अफाल उससे जहूर में आते हों। तो अहादीस तय्यबात में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी हुस्ने जन की के फजाइल बयान फरमाए, चुनाचे एक इरशाद आलीशान है कि बेशक हुस्ने जन रखना ईमान का हिस्सा है। नंबर दो, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने काबे को मुखातब करके इरशाद फरमाया, तू खुद और तेरी फजा कितनी अच्छी है, तू कितनी आजमत वाला है, तेरी हुरमत कितनी अजीम है, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नजदीक मोमिन के जानो मार और उससे अच्छा गुमान रखने की हुरमत तेरी हुरमत से भी ज्यादा है। एक और हदीसे पाक, हुस्नु जन्नी मिन हुस्निल इबादा, यानी हुस्ने जन एक अच्छी इबादत है। तो बयान करदा आखिरी हदीस मुबारका के तहत मुफस्सिर शहीर हकीर मुलुम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, मुसलमानों से अच्छा गुमान करना, उन पर बदगुमानी ना करना, यह भी अच्छी इबादत में से एक इबादत है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यकीनन किसी मुसलमान के बारे में हुस्ने जन रखना भी नेकी है, मगर शैतान लईन ये बड़ा मक्कार है, ये हमें हुस्ने जन रखने नहीं देगा, ये पूरी कोशिश करेगा और पलट पलट कर वार करेगा ताकि हम किसी तरह बदगुमानी में मुब्तला हो जाएं। बसाओकात शैतान किसी मुसलमान के बारे में बदगुमानी पैदा करने के लिए इस तरह का धोखा देता है कि ये तेरी होशियारी और जहानत है, और चूंकि तू मोमिन है और मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, तो तू अपनी मोमिनाना फरासत से हकीकत का सुराग लगा लिया है तूने, अब तो वो नेक आदमी हूं, तो शैतान इस तरह हमला करता है। हालांकि हकीकत ये है कि वो उस वक्त शैतान के फरेब का शिकार होकर बदगुमानी के गुनाह में मुब्तला हो रहा है। और इसी तरह फोन पर कोई अहम बात करनी हो तो एक दो बार जवाब ना मिलने पर तो उसने से जमा लिया जाता है, लेकिन वक्फे वक्फे से चंद बार कॉल करने पर भी रिसीव ना हो, देखा मेरा नंबर देख रहा होगा, है मेरा नंबर देख रहा होगा, मेरा नाम आ रहा होगा उसके फोन पर, सब पता है, देख रहा होगा, उठा नहीं रहा है। तो आपने कौन सी दूरबीन लगा रखी है, कौन सा कैमरा लगा रखा है कि आपको पता हो? भाई हो सकता है उसका फोन ही छिन गया हो सकता है घर में ही भूल कर चला गया हो, किसी जगह ऑफिस में भूल कर चला गया। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा ये तोहमतों का, गीबतों का, बसाओ का, दिल आजारियों का ये ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। वैसे मौके पर अगर कोई हुस्ने जन रखे, बदगुमानियों से बचे, सिला रहमी करने पर मुश्तमिल नेकी की दावत पेश करे, तो बसा औकात उसे झाड़ दिया जाता है। हालांकि जब तक कोई बात वाजे सामने ना आ जाए तो हमें उसने जन ही रखना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत ने ऐसे मौके पर उसने जन की तरकीब दिलाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि आपने किसी को चंद बार बल्कि 100 बार भी फोन या SMS या ईमेल किया हो, जवाब ना मिला, तब भी अपने मुसलमान भाई के साथ हुस्ने जन से काम लेकर उम्दा सवाब, इबादत का सवाब कमा लिया करें। अपना जहन यूं बना लिया करें कि जवाब ना देने में इसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। इस मसले पर भी नजर रखिए कि बिलफर्ज किसी ने जानबूझकर भी फोन वसूल नहीं किया या आपके SMS का जवाब नहीं दिया, मेल का जवाब नहीं दिया, तो शरण गुनाहगार होना जरूरी नहीं है। वरना तो जिस जिस के पास फोन होगा वो बार बार गुनाहगार होता रहेगा। तो खुद आप भी तो हर किसी का फोन वसूल नहीं करते होंगे। कई मर्तबा ऐसा होता होगा कि रात जागे, दिन भर सोए। अब आप तो सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, आज सारी रात जागे तो सुबह सोए आप। अब जोर तक अगर आप सोते रहे और किसी ने आपको फोन किया, चलो रोजाना बात करता हो, आपका कसूर क्या है? अब तो सोए रहे ना। तो हम मतलब इस मामले में तरकीब बनाए। और यहां पर अमीर अहले सुन्नत मजीद क्या फरमाते हैं कि फोन वसूल करना चाहिए, कि फोन वसूल करने वालों को मदनी फूलों से नवाजते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि बेशक हर किसी का फोन वसूल करना वाजिब नहीं है, मगर मुसलमान की दिल जोई उसे गीबतों, तोहमतों, बदगुमानियों वगैरह, गुनाहों से बचाने की अच्छी अच्छी नीयतों के साथ साथ हाथों हाथ फोन वसूल कर लिया करें। SMS का जवाब दे दीजिए। यह भी हो सकता है कि फोन करने वाले को कोई इमरजेंसी हो, सख्त मजबूरी की वजह से उस वक्त फोन वसूल ना कर सके, तो बाद में खुद ही उसे फोन कर लीजिए, सवाब मिलेगा, आखिरत में इंशाल्लाह अजर सवाब का अंबार होगा। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक सुनिए। सैयदना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला नुमा फरमाते हैं, नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नजदीक फराइज की अदायगी के बाद सबसे अफजल अमल मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। तो नियत करते, नियत करें इंशाल्लाह है कि हम किसी सबब से दूसरों को बदगुमानी से भी बचाएंगे और बदगुमानी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, मुसलमानों के साथ हुस्ने जन रखेंगे। इसके फवाइद बहुत हैं, फवाइद चंद एक बयान कर लेता हूं आखिर में। हुस्ने जन की बरकत से बंदा बदगुमानी से बचकर अजीम सवाब कमाता है। हुस्ने जन कायम करने की बरकत से एक मुसलमान भाई की इज्जत महफूज रहती है। बदगुमानी करते तो फिर किसी को बोलते हैं, उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो यूं उसकी इज्जत का भी तहफ्फुज़ हो जाएगा। नंबर 3, जो अपने मुसलमान भाई के बारे में हुस्ने ज़न रखता है उसे सुकून कल्ब नसीब होता है, और जो बदगुमानी की बुरी आदत में मुबतला हो उसके दिल में वहशतों का बसेरा होता है। और सबसे बढ़कर यह कि हुस्ने ज़न कायम करने की सूरत में बंदे को अल्लाह ताला और उसके मदनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा हासिल होती है। और इसके नुकसान बदगुमानी के ये बहुत हैं। अगर नंबर 1, सामने वाले पर अपनी बदगुमानी का इजहार किया तो उसकी दिल आजारी का कवी अंदेशा है, और बिला इजाजत शरीफ मुसलमान की दिल आजारी हराम है। नंबर 2, उसकी अगर उसकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे पर इजहार किया तो गीबत हो जाएगी, मुसलमान की गीबत करना हराम है। नंबर 3, बदगुमानी के नतीजे में तजस्सुस पैदा होता है। आपने किसी के बारे में कोई बात कह दी तो दूसरा जो है ना, तीसरा, वो कुछ वसवसे का शिकार हो जाता है, क्योंकि दिल महज गुमान पर सबर नहीं करता बल्कि तहकीक तलब करता है, और इस तरह बंदा तजस्सुस में जा पड़ता है। और तजस्सुस यानी अपने मुसलमान भाइयों के गुनाहों की टो में रहना, यह भी मना है। नंबर 4, बदगुमानी से बुग्ज, हसद, कीना, नफरत, अदावत जैसे बातनी अमराज पैदा होते हैं, और बात बात पर बदगुमानी करने वाले शख्स से लोग कतराते हैं। ऐसा शख्स लोगों के निगाहों में जलील होकर रह जाता है। बदगुमानी में कोई खैर नहीं है, बदगुमानी में कोई खैर नहीं है और हुस्न जन में कोई शर नहीं है, है? और निगरान शुरा ने एक बड़ा प्यारा जुमला अपने बाद होता है एसएमएस में, एक एसएमएस में फरमाया कि अगर आप पुरसकून रहना चाहते हैं, कौन कौन रहना चाहता है, पुरसकून कौन कौन रहना चाहते हैं, सब रहना चाहते हैं माशाल्लाह, अक्सर ने हाथ उठाए, अगर आप पुरसकून रहना चाहते तो अपने आप को हुस्ने जन का आदि बना लीजिए। बात ही खत्म। बच्चों के मुतालिक, बच्चों की अम्मी के मुतालिक, तो रिश्तेदारों के मुतालिक, तो पड़ोसियों के मुतालिक, तो जानने वालों के मुतालिक, यार ये मेरे बारे में यूं यूं सोचता, आपने क्यों सोचे यार, खैर है, हम इंशाल्लाह अच्छा सोचेंगे, अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खान।